हेलो फ्रेंड्स, मशीन लर्निंग इंटरव्यू हेल्प इन हिंदी पॉडकास्ट सीरीज के आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई एम योर होस्ट हल्क एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली रियली गुड। फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे रेगुलराइजेशन टॉपिक के बारे में, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर रेगुलराइजेशन के बारे में सब लोग जानते हैं। लाइक वेन एवर एनी वन और इंटरव्यूअर आस्क्स What is regularization and what are the popular methods for regularization? तो मोस्टली जनता ने रट रखा होता है कि regularization is a technique in machine learning that is used to prevent overfitting of a model. And the various methods are L1 regularization, L2 regularization, and elastic net regression and dropout. लेकिन इन सब का मतलब बहुत कम लोगों को पता होता है। अब यहाँ पर एक टर्म आया, overfitting। अब अगर ओवरफिटिंग शब्द आया है तो बायस वेरिएंस की बात तो जरूर आएगी। दोस्तों, पिछला एपिसोड मैंने बायस वेरिएंस टॉपिक पर बनाया था, और अगर आपने उस एपिसोड को नहीं सुना है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहले बायस एंड वेरिएंस वाला एपिसोड सुन लीजिए। वैसे रिवीजन के तौर पर मैं बता देता हूँ कि दीज टू टर्म्स बायस एंड वेरिएंस आर प्रेडिक्शन एरर्स, जहां पर बायस रिप्रेजेंट्स ट्रेनिंग एरर। Bias refers to the error that is introduced by oversimplifying a model. This could be due to a model having too few features or having an incorrect assumption about the relationship between the features and the target. The bias measures how far the average prediction is from the true value. मतलब ट्रेनिंग के दौरान एक्चुअल वैल्यू और प्रेडिक्शन में कितना डिफरेंस है। बहुत ज्यादा है तो मतलब बायस बहुत हाई है और मॉडल आपका बहुत सिंपल है, और ये सिचुएशन अंडरफिटिंग कही जाती है। अब आता है वेरिएंस। सो वेरिएंस कैन बी थॉट ऑफ एज ए मेजर ऑफ हाउ वेल ए मॉडल कैन जनरलाइज इट्स प्रेडिक्शंस बियॉन्ड द ट्रेनिंग डेटा। मतलब ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जब मॉडल को अनसीन डेटा या अननोन डेटा पर टेस्ट किया जाता है तो वहां कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर बहुत ज्यादा वेरी कर रहा है, कहीं पर अच्छा कहीं पर खराब, और मोस्टली जो एक्चुअल और प्रिडिक्टेड की डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा आ रही, तो मतलब वेरिएंस हाई है। और जब ट्रेनिंग एरर बहुत ही कम यानी जीरो के बराबर हो, यानी बायस कम हो, और लेकिन वो मॉडल जब अनसीन डेटा पे खराब परफॉर्म करे यानी वेरिएंस हाई हो, तो इस सिचुएशन को हम ओवरफिटिंग कहते हैं। तो ओवरफिटिंग का मतलब हुआ लो बायस एंड हाई वेरिएंस। मतलब मॉडल ट्रेनिंग डेटा को काइंड ऑफ मेमोराइज कर लिया, लेकिन व्हेन इट कम्स टू परफॉर्म ओवर अनसीन डेटा इट फेल्स। अब बात आती है कि ओवरफिटिंग को सॉल्व कैसे करें। तो इसके लिए हमें सबसे पहले, जब हम ये कहते हैं कि मॉडल लर्न्स द ट्रेनिंग डेटा वेरी परफेक्टली, या फिर और आसान भाषा में कहें कि मॉडल ने ट्रेनिंग डेटा को मेमोराइज कर लिया, इसका एक मतलब और भी है कि मॉडल ने डेटा में प्रेजेंट नॉइस को भी लर्न कर लिया। आइडियली नॉइस इज ए इंफॉर्मेशन दैट कैन नॉट बी लर्न और मॉडल। तो ये जो पूरी बात कही हमने, इस बात को अगर हम मैथमेटिकली समझ जाए तो इसका एक्चुअल मतलब क्या है, तो हम रिग्रेशन के एग्जांपल से इसके मैथमेटिकल मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक डेटा है जिसमें एक वेरिएबल है एम्प्लॉय एक्सपीरियंस और एक वेरिएबल है एम्प्लॉय सैलरी। तो अब हम एक रिग्रेशन मॉडल फिट करना चाहते हैं जो कि प्रिडिक्ट करेगा सैलरी ऑफ एम्प्लॉय यूजिंग हिज एक्सपीरियंस। तो अगर हम ये अज्यूम करें कि रिलेशन लीनियर है, तो एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल फिट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, क्लास 12th में पढ़ी थी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़ रहे थे, y इज इक्वल टू mx प्लस c। इस एग्जांपल के केस में y है आपकी सैलरी और x वेरिएबल है एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस। m रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप को जो कि मॉडल लर्न करेगा, और c जो है वो इंटरसेप्ट है। अब मशीन लर्निंग की लैंग्वेज में m को हम थीटा से, यानी वेट, m जो है वो वेट है जिसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और सी को बी से रिप्रेजेंट किया जाता है जो कि बायस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अच्छा, ये बायस और वो बायस थोड़ा डिफरेंट है भैया, ये ध्यान रख। तो अगर आप इस रिलेशन को अब अगर नॉन लीनियर मान के चले तो इक्वेशन थोड़ी चेंज हो जाएगी, और कैसी मिलेगी, y इज इक्वल टू थीटा 1x प्लस थीटा 2x स्क्वायर प्लस पी। यहाँ पर हमने पॉलिनोमियल डिग्री 2 तक इक्वेशन को लिया है, तो यहाँ पर हमने रिलेशन को नॉन लीनियर अज्यूम किया। अब जैसे जैसे पॉलिनोमियल डिग्री बढ़ाएंगे नंबर ऑफ वेट्स बढ़ जाएंगे, जैसे पिछले केस में हमने पॉलिनोमियल डिग्री 2 किया तो हमारे पास दो वेट्स हुए, थीटा 1 और थीटा 2। अब अगर अगर हम इसको 3 मान लेते हैं तो हो जाएगा थीटा 1x प्लस थीटा 2x स्क्वायर प्लस थीटा 3x³ प्लस बी। तो जैसे जैसे हम मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे, एक्सपेक्टेडली ऐसा है कि मॉडल फिट कर लेगा ट्रेनिंग डेटा पे प्रॉपरली। अब फिट का क्या मतलब? फिट का मतलब है कि कोई एरर नहीं आ रही। कोई एरर नहीं आ रही का मतलब एक्चुअल और प्रिडिक्टेड के बीच का डिफरेंस जीरो आ रहा है। ये जीरो का मतलब हुआ लॉस जो है ट्रेनिंग लॉस वो जीरो है। मोस्टली हम मीन स्क्वायर एरर लेते हैं। इस केस में हमने बिल्कुल परफेक्ट लाइन मिलेगी, लेकिन जब हम इस परफेक्ट लाइन यानी इस ट्रेन मॉडल को जब हम अनसीन डेटा पर टेस्ट करेंगे तो जो एरर आएगी यानी एक्चुअल और प्रिडिक्टेड में डिफरेंस यानी मीन स्क्वायर एरर या MEE जो भी आपने लॉस फंक्शन लिया है तो वो बहुत ज्यादा आएगा। तो इस पूरे सिचुएशन को ओवरफिटिंग सिचुएशन कहते हैं। अब आती है बात सोल्यूशन ढूंढने की। तब सीन में एंट्री होती है रेगुलराइजेशन यानी नियमितीकरण की। अब इसको एक ऐसे एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए आप एक गांव के सरपंच हैं जहां 25 फैमिली रहती हैं, हर फैमिली में 4 लोग हैं यानी टोटल उस गाँव में 100 लोग रहते हैं। सरपंच का काम है सोल्यूशन देना। अब सरपंच ने एक कमेटी बनाई, इस कमेटी को आप मशीन लर्निंग मॉडल समझ सकते हैं। मान लीजिए कि कोई भी इशू आएगा तो वो उस कमेटी के पास ही जाएंगे जिसका हेड होगा सरपंच और उसी से सोल्यूशन मांगेंगे। अब मान लीजिए कोई इशू आया, लेट सपोज कि दो ग्रुप में जमीन के कब्जे को लेकर झगड़ा हो गया। अब सरपंच की कमेटी यानी मॉडल को आउटपुट देना है यानी फैसला देना है। अब केस वन क्या है? सरपंच ने सोचा कि कमेटी में केवल मैं रहता हूँ, मैं ही सरपंच हूँ, मैं ही हेड हूँ, मैं ही जो फैसला करूंगा वही होगा। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक क्या होगा कि अगर वो अकेले फैसला करेगा तो जिसके पक्ष में फैसला करेगा तो गांव वाले ये समझेंगे कि सरपंच जो है वो हाईली बायस्ड है, यानी इसने मामले को समझा नहीं। एक आदमी जिसके पक्ष में फैसला दिया है वो उसका कुछ जानने वाला था, तो इसने इनपुट यानी कि फैक्ट्स और एविडेंस और आउटपुट यानी कि किसकी जमीन होगी के बीच में कोई रिलेशन नहीं समझा, कोई फाइंड आउट नहीं किया और सरपंच ने मामले को बहुत ओवर सिंप्लीफाई कर दिया और हाईली बायस्ड होकर फैसला सुना दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस सिचुएशन में कमिटी में केवल एक आदमी था यानी केवल एक वेट था, यानी लीनियर मॉडल बना दिया यानी ओवर सिंप्लीफाई कर दिया। इससे क्या हुआ? एरर बढ़ गई। तो यहाँ पर सिस्टम हो गया हाईली बायस्ड यानी ओवर सिंप्लीफाई, बायस की वैल्यू हाई हो गई। अब केस टू समझते हैं। अब सरपंच ने सोचा कि यार ऐसा करते हैं, ये केस वन तो गड़बड़ है, वो तो नहीं चलेगा, ऐसा करते हैं सबको बुला लेते हैं यानी 100 के 100 लोगों को कमेटी में रख लेते हैं जिसमें औरतें बच्चे बूढ़े जवान सब हैं। सबके सामने इनपुट और आउटपुट रखेंगे और सबसे पूछ के फैसला करेंगे तो कोई नहीं कहेगा कि मैं बायस्ड, यानी अब बायस की वैल्यू बहुत कम हो गई। अब ये सेटिंग सरपंच की ओवर कॉम्प्लेक्स हो गई है। उन 100 में से एक एक पर्सन जो भी है, जितने भी 100 लोग हैं वो सब एक एक वेट हो गए उस मॉडल के यानी कमेटी के वेट्स, जिसमें किसी की वैल्यू हाई है और किसी की कम है यानी थीटा की वैल्यू यानी वेट की वैल्यू। तो यहाँ पर अगर हम आदमी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उस वैल्यू को हम थिंकिंग पावर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ हर किसी ने मामले को समझ लिया और देखने में ये तो बेस्ट तरीका लग रहा है कि जितने ज्यादा लोग होंगे उतना बढ़िया फैसला आएगा, लेकिन जब बात आई रियल टाइम में फैसला सुनाने की तो हर मामले में ऐसा होने लगा कि खिचड़ी पकने लग गई। कुछ लोग एक के पक्ष में बोलेंगे, कुछ लोग दूसरे के पक्ष में बोलेंगे, तो मॉडल तो पूरा कॉम्प्लेक्स हो गया, लेकिन जब टेस्टिंग की बात आई तो ये मॉडल फेल हो गया। कुछ ओवर ही लोग हो गए कमेटी में और कमेटी ओवरफिट हो गई। तो जब बन रही थी कमेटी यानी जब ट्रेनिंग हो रही थी मॉडल की, तब सब बढ़िया लग रहा था, लग रहा था कि एकदम ये कमेटी तो मचा के रख देगी और ये तरीका सबसे बेस्ट है, लेकिन जब उसको रियल टाइम में इम्प्लीमेंट किया तो ये तरीका फेल हो गया। तो यानी ओवरफिट हो गया, यानी बायस की वैल्यू यहाँ पे बहुत कम थी लेकिन वेरियंस की वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई। तो लो बायस हाई वेरियंस ओवरफिट हो गया मॉडल। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है बायस वेरियंस ट्रेड ऑफ, जो कि पिछले एपिसोड में हमने समझा था। यानी बहुत सिंपल भी ना हो एक मॉडल, यानी कमेटी में इतने ही कम ना लोग हो कि जो कहने लगे कि भैया तुम सिर्फ अपने जानने वालों के पक्ष में फैसला देते हो, और इतनी भीड़ भी ना हो कमेटी में कि कुछ डिसाइड ही ना करते बने। एक काम करते हैं, कुछ लोगों को हटा देते हैं कमेटी से, यानी मैथमेटिकली बोले तो वैल्यू जीरो के बराबर कर देते। तो बजाय कि हर किसी को कमेटी में रखने के, एक सोल्यूशन देते हैं कि हर फैमिली से एक रिप्रेजेंटेटिव बना के रख देते हैं। तो अब क्या हुआ, कमेटी में केवल 25 मेंबर्स हो गए, तो 100 के मुकाबले तो ये एक चौथाई है। तो अब डिसाइड करने में भी आसानी पड़ रही है। तो इस सेटिंग में जहां पर कमेटी में केवल 25 मेंबर हो तो मॉडल बायस्ड भी नहीं है और रियल टाइम में रिजल्ट भी दे रहा है, यानी वेरियंस भी कम है, यानी ये हुआ एक्चुअल बायस वेरियंस ट्रेड ऑफ। और इस तरह से ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो ये जो बायस्ड और वेरियंस ट्रेड ऑफ को इम्प्लीमेंट करने की प्रक्रिया है, इसे ही रेगुलराइजेशन यानी नियमितीकरण कहते हैं। अब अगले एपिसोड में हम रेगुलराइजेशन को मैथमेटिकली समझेंगे। तब तक स्टे ट्यून्ड और अपना ध्यान रखिए और सुनते रहिए मशीन लर्निंग इंटरव्यू हेल्प इन हिंदी।